रात का सन्नाटा। सुषमा देवी की हवेली में हर तरफ खामोशी पसरी हुई थी। दीवारों पर लगी घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी, और उस खामोशी के बीच सुषमा देवी अपने बिस्तर पर आंखें बंद किए लेटी थीं, लेकिन नींद उनसे कोसों दूर थी। पेट में हल्की सी जलन हो रही थी, क्योंकि उन्होंने रात का खाना नहीं खाया था। असल में शाम को छोटी सी बात पर नंदिनी से उनकी बहस हो गई थी, और उसी गुस्से में उन्होंने खाना खाने से मना कर दिया था। मुझे नहीं चाहिए किसी का एहसान, उन्होंने उसी वक्त कहा था, लेकिन अब रात के सन्नाटे में वही फैसला उन्हें भारी पड़ रहा था। उन्होंने करवट बदली, फिर दूसरी करवट, लेकिन बेचैनी कम नहीं हुई। आखिरकार उन्होंने धीरे से आंखें खोली और उठकर बैठ गईं। कमरे में हल्की अंधेरी थी, बस खिड़की से आती चांदनी थोड़ी रोशनी दे रही थी। उन्होंने गहरी सांस ली और बिस्तर से उतर गईं। थोड़ा सा खा लूं, उन्होंने मन ही मन सोचा। धीरे धीरे कदम रखते हुए वो कमरे से बाहर निकली, ताकि किसी की नींद ना टूटे। हवेली का लंबा गलियारा इस वक्त और भी ज्यादा डरावना लग रहा था। हर कदम की आहट खुद उन्हें ही अजीब लग रही थी, लेकिन भूख सब पर भारी थी। कुछ ही देर में वो रसोई घर तक पहुंच गईं। रसोई में हल्की सी ठंडक थी और बर्तन करीने से रखे हुए थे। उन्होंने धीरे से डिब्बे खोलने शुरू किए, कहीं कुछ बचा हो खाने को। पहला डिब्बा खाली, दूसरा सिर्फ थोड़ा सा सब्जी का तेल, तीसरा थोड़ा सा दाल। उनकी आंखों में हल्की सी चमक आई। फिर उन्होंने चावल का भगोना खोला, उसमें भी थोड़ा सा बचा हुआ था। चलो, भगवान का शुक्र है, उन्होंने धीमे से कहा। उन्होंने प्लेट निकाली और दाल चावल उसमें डालकर एक कोने में बैठ गईं। हाथ कांप रहे थे, लेकिन भूख इतनी थी कि उन्होंने बिना सोचे खाना शुरू कर दिया। हर निवाला जैसे उनके अंदर की खालीपन को भर रहा था। लेकिन तभी किसी के कदमों की आवाज आई। सुषमा देवी के हाथ रुक गए। उन्होंने घबराकर दरवाजे की तरफ देखा, और अगले ही पल दरवाजे पर नंदिनी खड़ी थी। उसकी आंखों में हैरानी थी और चेहरे पर वही पुराना ताना मारने वाला भाव। वाह, उसने धीरे से कहा, ये क्या चल रहा है यहाँ? सुषमा देवी कुछ पल के लिए चुप रह गईं। मैं बस, उन्होंने धीरे से कहा, थोड़ा सा खा रही थी, नंदिनी ने हंसते हुए कहा। अच्छा, शाम को तो बड़े नखरे दिखा रही थी, अब रात में चोरी छुपे खाना? उसकी आवाज में साफ ताना था। सुषमा देवी के चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था। ऐसा मत बोलो बहू, उन्होंने धीरे से कहा, मैं बस सो गई थी और अब भूख लग गई, पूरा दिन काम किया था। नंदिनी ने आंखें घुमाई। हाँ हाँ, आप तो बहुत काम करती हैं, हम लोग तो बस बैठे रहते हैं ना? उसकी बातों में जहर घुला हुआ था। इतने में और आवाजें आने लगीं। बड़ा बेटा अविनाश, उसकी पत्नी सुप्रिया और छोटा बेटा सुजीत भी वहां आ गए। क्या हुआ? अविनाश ने पूछा। नंदिनी ने तुरंत जवाब दिया, कुछ नहीं, आपकी माँ को भूख लग गई थी तो अब रात में चुपके से खाना खा रही हैं। सुप्रिया हल्का सा हंस पड़ी। ओ, ड्रामा कभी खत्म नहीं होता, सुजीत ने भी तंज कसते हुए कहा, पहले तो इतना नाटक किया, अब खुद ही खा रही हैं। सुषमा देवी के हाथ कांपने लगे। बेटा, ऐसा मत बोलो, उन्होंने भर्राई आवाज में कहा, मैंने जानबूझकर नहीं किया, बस तबीयत ठीक नहीं थी। लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। नंदिनी फिर बोली, अगर खाना ही था तो सबके साथ खा लेती, ये चोरों की तरह लात में उठकर क्यों? ये शब्द सीधे उनके दिल में चुभ गए। मैं चोर नहीं हूं, उन्होंने पहली बार थोड़ा तेज कहा, मैं इस घर की मालकिन हूं। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन फिर अविनाश ने ठंडे लहजे में कहा, तो फिर माँ की तरह व्यवहार भी करो, हर बात पर नखरे, ये सब ठीक नहीं है। सुप्रिया ने भी जोर दिया, और घर के नियम सबके लिए एक जैसे होते हैं। सुजीत ने सिर हिलाया, हमें भी काम करना पड़ता है, सिर्फ आपको ही नहीं। अब सुषमा देवी की आंखों में आंसू आ चुके थे। उन्होंने प्लेट नीचे रख दी, भूख अब कहीं खो गई थी। ठीक है, उन्होंने धीमे से कहा, अब नहीं खाऊंगी, और वो धीरे धीरे उठ गईं। कोई उन्हें रोकने नहीं आया, कोई ये नहीं बोला, बैठ जाओ, खा लो, वो चुपचाप अपने कमरे की तरफ चल दी। हर कदम जैसे उनके दिल पर भारी पड़ रहा था। कमरे में पहुंचते ही उन्होंने दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर बैठ गईं। आंखों से आंसू बहने लगे बिना किसी आवाज के। ये मेरे बच्चे हैं, उन्होंने खुद से पूछा, जिन्हें मैंने पाला, जिनके लिए सब कुछ किया। उनकी नजर कमरे में घूमी, हर चीज उनकी मेहनत की गवाही दे रही थी। लेकिन अब सब कुछ उनसे छिन चुका था, सब अपने नाम कर लिया, उन्होंने बुदबुदाया, और मुझे नौकर बना दिया। उनकी आवाज टूट गई। दिल में एक अजीब सी खालीपन थी, और उससे भी बड़ा दर्द। उन्हें याद आने लगा वो वक्त जब ये घर उनका था, जब बच्चे उनके बिना एक कदम नहीं चलते थे, जब उनकी हर बात की कद्र होती थी, और अब वही बच्चे उन्हें ताने मार रहे थे। शायद उन्होंने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरी ही गलती है, मैंने ही इन्हें इतना सिर चढ़ाया। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार उस सन्नाटे में एक टूटन थी। बाहर रसोई में सब वापस अपने अपने कमरों में जा चुके थे। किसी को फर्क नहीं पड़ा कि एक माँ आज भूखी सो गई और अंदर सुषमा देवी ने धीरे से लेटते हुए आंखें बंद कर ली। नींद अभी भी नहीं आ रही थी, लेकिन अब भूख से ज्यादा दिल का दर्द भारी था और उसी दर्द के साथ एक ख्याल धीरे धीरे उनके मन में जन्म ले रहा था। क्या अब मुझे भी बदलना होगा? उनकी आंखों से आखिरी आंसू बहा और कमरे की खामोशी में खो गया। लेकिन ये खामोशी आने वाले तूफान से पहले की थी। रात और गहरी होती चली गई, खिड़की के बाहर हवा तेज चलने लगी, पर्दों की हल्की सरसराहट कमरे की खामोशी को चीर रही थी। सुषमा देवी की आंखें बंद थी, लेकिन दिमाग में तूफान उठ चुका था। हर ताना, हर शब्द बार बार उनके कानों में गूंज रहा था। अचानक उन्होंने आंखें खोली। इस बार उनकी नजरों में आंसू नहीं थे, कुछ और था, एक सख्ती, एक फैसला। उन्होंने धीरे से बिस्तर के पास रखा पुराना संदूक खोला, जिसमें कुछ कागज और पुराने गहने रखे थे। उनकी उंगलियां उन कागजों पर ठहर गईं।